Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनकम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, आज की शुरुआत मैं कुछ सुंदर पंक्तियों से कर रहा हूँ जो हमें मोहम्मद इकबाल साहब ने बिलासपुर से भेजा है। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। वो कहते हैं, जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हों, काम में खुश हों, आराम में खुश हों, आज पनीर नहीं तो दाल में खुश हों, आज गाड़ी नहीं तो पैदल खुश हों, अगर किसी का साथ नहीं तो अकेला खुश हों, आज कोई नाराज है तो उसके इस अंदाज से खुश हों, जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज़ से खुश हों, जिसको पा नहीं सकता उसको सोच कर ही खुश हों, बीता हुआ कल जा चुका है उसकी मीठी याद में खुश हों, आने वाले कल का पता नहीं इंतज़ार में खुश हों, हँसता हुआ बीत रहा है पल आज में भी खुश हों और कल में भी खुश हों, जिंदगी है छोटी हर हाल में खुश हों। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ आपने हमें प्रेषित की हैं। आइए सुंदर पंक्ति के साथ, खुशी के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत खुशी से आपका स्वागत है
इकबाल साहब। मैं भी इकबाल साहब की बात सुन के बहुत खुश हूँ।
जी जी,
धन्यवाद बहुत बहुत, और इनको भी बहुत धन्यवाद। देखिए, यही है बस कि अगर मनुष्य खुश रहने का मन बना ले तो वो हर हाल में खुश रहेगा। केवल पॉजिटिव होने की बात है, जरूरत है, तो बहुत अच्छी बात है और हम सभी इससे सब कुछ सीखेंगे। मैं भी सुनकर सोच रहा था कि हम सबको, मेरे सहित सबको, ऐसा ही हर चीज से खुशी ले लेनी है, चाहे वो बीत गया, चाहे अपने हैं, चाहे कोई नाराज हो गया है, चाहे कुछ और बात हो गई है, हर बात को पॉजिटिव लेकर हम अपने को खुश रखने का एक संकल्प कर लें।
जी 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 जी, थोड़ा सा कठिन वैसे होता चल रहा है भ्राता जी। आज के दौर में यदि देखा जाए तो खुशी कहीं गुम सी होती चली जा रही है। हर एक के चेहरे पे, ज्यादातर लोगों के चेहरे पे एक तनाव, एक उदासी, निराशा या 12 बजा हुआ दिखाई देता है।
वो 12 इसलिए बज गए कि सच तो बात यह है कि जो बड़ी सूक्ष्म चीज है कि मनुष्य के ब्रेन की शक्ति काफी कम होती जा रही है, वीक पड़ता जा रहा है मनुष्य का ब्रेन, उसका माइंड कमजोर होता जा रहा है और प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। या ऐसे कहें कि क्योंकि मन कमजोर है तो उसे हर चीज भारी दिखाई दे रही है, तो इसलिए वो एक्सपेक्ट ज्यादा करता है दूसरों से।
जी जी,
कि घर में वो आया है तो सब कुछ अच्छा अच्छा मिले। अब चाहे उसकी पत्नी भी जॉब से आई हो, थकी हुई हो, लेकिन वो चाहता है चाय मिले आते ही, भोजन अच्छा मिले। वो ये नहीं सोचता कि वो भी तो जॉब पर थी, वो भी तो मेरी तरह थकी होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो टू मैनी एक्सपेक्टेशंस है ना, ये मनुष्य की खुशी को समाप्त कर रही है। और मनुष्य यदि इस तरह के चिंतन से अपने को एंजॉय करना प्रारंभ कर ले, ठीक है घर में आए हैं, चाहे में 5-7 मिनट लेट हो रही, तब तक रिलैक्स हो लेते हैं, थोड़ा लेट लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तो घर में आते ही एक खुशी का माहौल बना दें, तो दूसरा व्यक्ति भी अगर थक कर आया है वो भी बहुत रिलैक्स हो जाएगा, खुश हो जाएगा।
ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है भ्राता जी, कि हम भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश करें। आपने एक कारण गिनाया कि हम जब अपेक्षाएं रखते हैं दूसरों से तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। ऐसी कुछ और कारण है जिनके कारण हमारी खुशी गुम होती चली जा रही है?
बहुत सारी बातें आजकल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि जैसे संसार में महंगाई बढ़ रही है ना, खुशी भी बहुत महंगी होती जा रही है और ये कहीं नहीं मिलती है। लोग खुश दिखाई देते हैं लेकिन कोई बात आती है तो खुशी छूमंतर हो जाती है। मैं बाहर भी था, यूके में, तो देखता था विजिटर्स बहुत आते हैं, लोग खुश दिखाई दे रहे थे, सड़कों पे ऐसे ही घूम रहे थे जैसे भारत में घूमते हैं, हंस बहल रहे थे, कहीं ना कहीं जो देखने के दर्शनीय स्थल थे वहाँ भी अच्छी भीड़ दिखाई देती थी, लोग फोटो ले रहे थे, वो सेल्फी का डंडा पकड़ा हुआ सब फोटो ले रहे हैं, खुश नजर आ रहे थे। तो मनुष्य कहीं ना कहीं अपने को खुश रखने की कोशिश करता है, और उन देशों में तो प्रथा ही बन रही है, 5 दिन काम किया कोई 3 दिन ही करते हैं, कोई 2 ही दिन करते हैं, कोई 4 दिन करते हैं, अब जो दो दिन बचे जो कमाया वो खर्च कर देना है, क्योंकि उन्हें जमा करने की तो आदत भी नहीं है ना, उसकी वो आवश्यकता समझे। तो कहीं ना कहीं खुशी के लिए पिकनिक स्पॉट्स पर बाहर घूमने होटल में जाके खाने पीने का वो कर लेते हैं। तो ये सब खुशी का इंतजाम भी इसलिए करना पड़ रहा है कि खुशी है नहीं।
जी, जी,
नहीं तो ये भी सोच सकते हैं कि दो दिन बचे हैं, अब घर में बैठकर बच्चों के साथ आनंद मनाएंगे या बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे या घर में बैठ के कुछ पिकनिक जैसी करेंगे। लेकिन वो बाहर निकलते हैं क्योंकि घर में उनको माहौल नहीं मिलता है। बढ़ती हुई समस्याएं इसकी जिम्मेदार हैं, संबंधों में कटुता इसकी जिम्मेदार है, कामकाज का दबाव और महंगाई, धन की बहुत आवश्यकता और धन का अभाव इसका जिम्मेदार है, परिवारों में और शरीरों में बढ़ते हुए रोग इसके जिम्मेदार हैं, और आजकल विशेष रूप से जो भयानक स्थिति होती जा रही है, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, कारण समझ में नहीं आता। आज ही मेरे पास 3 लोग ऐसे आ गए जो ये बता रहे थे कि हम डरते हैं बिना मतलब, रात को बहुत डर लगता है, सब लोग हमारे पास सोए हों ऐसी इच्छा होती है, अकेले होते डर लगने लगता है। दूसरे आए कि वो जीवन भर सोई नहीं है बहन,
जीवन भर
कहा मैं तो तरसती हूँ कि नींद क्या होती है, मुझे कोई सुला दे। तो मैं सोच रहा था कि देखो खुशी होती नहीं मनुष्य को, ये सब पीछे लगी हुई चीजें है ना, लेकिन अब मनुष्य को खुश रहना सीखना। और भी मैं कई चीजें देखता हूँ कि जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में कुछ ज्यादा बुरे कर्म कर लिए थे, विषय विकारों में जो ज्यादा रहे, अब वो चीजें अंदर ही अंदर उनको डरा रही हैं, उनकी खुशी को कहीं ना कहीं छीन रही हैं। तो मनुष्य क्या है खुशी के लिए, व्यसन। चलो भाई शराब पियो, रात को सो जाओ शांति से, युवक भी बहुत टेंशन हो गई पढ़ाई की, फलानी ड्रग मिल रही है खाओ, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन इससे पुनः उनका ब्रेन वीक हो जाता है और अगले दिन उनकी खुशी कम से कम 1% तो कम मिलेगी ही उन्हें, और दूसरे दिन फिर उन्हें वही साधन यूज करने पड़ेंगे, तो टोटल ये जो सर्किल है उनका वो बिगड़ जाता है और खुशी मुश्किल होती जाती है। तो बहुत सारे कारण है, कामनाएं तो उसका एक कारण, कामनाओं का विस्तार भी बहुत हो गया है। तो मैं वहाँ देखता था यूके में कि लोग टाइम के बड़े पंचुअल हैं, बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ टाइम पे करना चाहिए, लेकिन इस पंचुअलिटी ने उनको टेंस कर दिया है कि गाड़ी लेके बाहर आ गए हैं और दूसरा आने वाला व्यक्ति आया नहीं है, टाइम हो गया 1 मिनट बीता, अब उनकी बढ़ती जा रही है
टेंशन,
2 मिनट बीता और 3 मिनट पे तो वो परेशान, और आते ही उसकी भी खुशी गुम और अपनी भी गुम या उसको छोड़ के ही भाग लिए चल दिए। तो पंचुअल होना बहुत सुंदर बात है, लेकिन रिलैक्स रहना उसकी बहुत जरूरत है जीवन में। तो ये कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं कि मनुष्य बहुत सेंसिटिव हो गया है, पंचुअलिटी ने उसे सेंसिटिव बना दिया है, एक्सपेक्टेशंस ने उसे सेंसिटिव बना दिया है, और ये जो बहुत निगेटिविटी बढ़ गई है, कहीं किसी की भावनाएं हर्ट हुई हैं, किसने किसे प्यार किया था उसमें उनको धोखा मिला है, इन चीज़ों ने उनको सेंसिटिव बना दिया है, तो खुशी नष्ट हो गई। हजारों कारण इसके हैं और हमें स्पिरिचुअल लेवल पे इसको ठीक करना होगा।
बिल्कुल राधा जी, आपने एक बात, ये बहुत सारे कारण आपने गिनाए, और किसी ना किसी कारण से व्यक्ति अपनी खुशी गुम कर देता है या दुखी है, अशांत है, परेशान है। आपने एक बात कही कि ड्रग्स लेकर के, शराब पी के, पार्टी में जाके, घूम फिर के व्यक्ति यहाँ से खुशी ढूंढना चाहता है, लेना चाहता है, इनसे इंस्टेंट वो थोड़ी देर के लिए ले भी लेता है, लेकिन यदि इन चीज़ों से हमें परमानेंट वाली खुशी प्राप्त नहीं हो रही है, होती भी नहीं है, तो किस ओर बढ़ाया जाए, क्या साधन और माध्यम हो सकता
है? देखिए यही है, पार्टी में मनुष्य जाएगा तो उसे खुशी होती नहीं है, पर सच तो ये है कि वो उन भारी कठिनाई बातों को भूल जाता है कुछ समय के लिए, इसलिए वो उस माहौल को एंजॉय करने लगता है, और जैसे ही वो वहां से बाहर निकलेगा फिर वही चीज उस पर,
शराबी के साथ भी
ऐसे ही होता है। इसलिए ठीक है, मनुष्य को पिकनिक भी करनी चाहिए, उसको पार्टियां भी करनी चाहिए, और इस तरह खुशी का माहौल भी बनाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें जो गंदगी है, मान लो गलत डांस हो रहे हैं, गलत गीत बज रहे हैं, जिसका मनुष्य के चरित्र पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे उसके अंदर क्रिमिनल फीलिंग्स जागृत हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसकी खुशी को, उसकी शांति को, उसके सुख को कल से ही नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। लोग इसको समझ नहीं पाते, वो देख सकते हैं कि रात को अगर 2 बजे तक वो ऐसी पार्टियों में रहे हैं जहाँ गंदगी थी, और वो सोए हैं घर आके 3 बजे और फिर वो उठ रहे हैं 12 बजे, उठते ही उनका मन उदास होगा, उसमें वो आनंद नहीं होगा जो उन्होंने वहां प्राप्त किया था। इसे बिल्कुल स्पष्ट है कि वो आनंद नहीं था, आनंद को नष्ट करने वाली चीज थी वो, क्षणिक जागृति थी केवल। इसलिए इन चीजों को छोड़कर मनुष्य को अब अध्यात्म को अपनाना पड़ेगा। अध्यात्म की बात जब हम करते हैं तो लोग शायद ये भी सोचते हो हमारी बात सुनकर कि हम कोई प्रचार कर रहे हैं, भाई हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, हम उनकी ओर सबको अट्रैक्ट करने के लिए ये कहते हैं। वो तो ठीक है, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है उसका प्रचार तो करना ही चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा माल बनाया हो जो घरों में बहुत उपयोगी हो तो वो ऐड बहुत करता ही है ना, पैसे देकर भी, भाई ये बहुत अच्छी चीज आई है, सस्ती भी है, आप इससे लेंगे हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो नुकसान हो रहा वो भी नहीं आएगा। तो एक अच्छी चीज का प्रचार होना ही चाहिए। यूके में भी मुझे रेडियो इंटरव्यू देने का मौका मिला, टीवी के 3 बार इंटरव्यू हुए, मैंने उनको ये बात कही कि आप लोग जो एक निगेटिव चीज दिखाते हैं, और पत्रकारिता में भी जो हो गया है कि समाचार वही है जो कुछ खराब हो, भाई कुत्ते ने मनुष्य को काटा, ये कोई न्यूज थोड़ा ही है, मनुष्य ने कुत्ते को काट लिया ये न्यूज है। अभी आपने ऐसे न्यूज दे तो दिए, लेकिन लोग उससे सीख क्या रहे हैं, समाज में वाइब्रेशंस कैसे फैल रहे हैं। एक गलत केस हुआ है उसको अखबारों में टीवी चैनल्स पर उछाला जा रहा है, एक केस हुआ, मान लो 5% केस हुए, 95% सुंदर हैं। अभी 95% को भूल कर 5% हावी हो रहा है समाज पर, इस तरह बुराइयां हावी हो रही हैं। हमें अब जरूरत है अच्छाइयों के प्रचार की, इसको अध्यात्म कहते हैं। अच्छी चीजों का प्रचार हो, चरित्र का प्रचार हो, सुंदर विचार समाज को दिए जाएं। मैं बताऊं, एक कॉलेज में प्रोग्राम था, मैंने सबसे पूछा आप लोग हाईली एजुकेटेड हो, कई उसमें PhD डिग्री वाले थे, मैंने कहा मुझे हर एक व्यक्ति एक एक दो दो सुंदर विचार सुनाए। जब मैंने पूछा वो एक दूसरे को देखने लगे, एक ने कहा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मैंने कहा पर हाई थिंकिंग क्या, वो तो सुनाओ कुछ। मुश्किल से किसी ने एक आधी चीज सुनाई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने कहा ये भी किताबों में रह गया है, प्रैक्टिकल तो है नहीं, इसलिए कहने वाले को भी लज्जा आ रही है कि कह तो रहे हैं यार पर ये है तो नहीं कहीं। तो देखिए, मनुष्य को सुंदर विचारों का भी ज्ञान नहीं है, इसके प्रचार की जरूरत है, यही अध्यात्म है। तो मनुष्य को अध्यात्म की ओर बढ़ना ही चाहिए। और मैं तो सभी दर्शकों से कहूंगा कि अब अगर जीवन जीना है, अगर सुख लेना है, खुशी का माहौल घरों में बनाना है, तो अब अध्यात्म को पुनः अपनाएं। और सभी ये भी जान लें कि जब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो वो पूजा पाठ और भक्ति नहीं, वो ये नहीं कि हम ग्रंथ पढ़ने लगेंगे, ठीक है हम गुरुद्वारे में जाके पाठ करने लगे सुनने लगे, वो अच्छी चीज है, वो अच्छे क्षण होते हैं जहाँ मनुष्य को सुख मिलता है, लेकिन उन चीजों को जीवन में अपनाना, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। कि हमारे धर्म ग्रंथ जो कुछ हमें शिक्षा दे रहे हैं, जिनको सुनने से ही मन प्रसन्न होता है, उनको यदि जीवन में धारण करेंगे तो प्रसन्नता सदाकाल के लिए साथी बन जाएगी। मंदिरों में जाते हैं लोग, मूर्तियों के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं, अपने पाप क्षमा कराते हैं, लेकिन देखो जिन मूर्तियों के सामने जाते ही आपको इतनी खुशी होती है, आप अपने पाप को भी रियलाइज करने लगते हैं, आप पुण्य कर्म करने की प्रेरणा लेने लगते हैं, यदि आप अपने जीवन को देवत्व की ओर ले चले तो कितना सुंदर हो जाएगा। तो बस अध्यात्म ये सिखाता है कि हम श्रेष्ठताओं को, महानताओं को, प्योरिटी को, सुंदर विचारों को, आत्मीयता को, संभाव को अपने जीवन में धारण करें, ताकि हमारे मन में सभी के लिए प्रेम और सद्भावनाएं हो जाएं, हमारे मन से कटुता, निगेटिविटी, ईर्षा द्वेष, बदले की भावना ये समाप्त हो जाएं। ये स्पिरिचुअलिटी है और इट इज वन फॉर ऑल। संसार में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ, यही सबके लिए है और यही सब धर्मों का मूल है, यही सब धर्मों का सार है। इसकी ओर हम चलेंगे तो न जीवन में सुख शांति आएगी, खुशी की लहर फैलेगी, लेकिन हम शक्तिशाली बनेंगे, हम सक्सेसफुल भी होंगे और जीवन की यात्रा आराम से एंजॉय कर सकेंगे।
जी, एक सुंदर हाका खींच दिया है आपने कि आध्यात्म क्या है, अन्यथा व्यक्ति केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रहता है या फिर वस्त्र परिवर्तन कर लेने को, व्रत रख लेने को इसे आध्यात्म समझता है। प्रति जी, एक विशेष बात आपने जो बात कही बहुत खूबसूरत है, ये जीवन में आ जाए, लेकिन व्यक्ति इन्हें धारण क्यों नहीं कर पा रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट सा प्रश्न है।
दो चीजें इसके पीछे दिखाई देती हैं। एक तो ये कहीं भी इन चीजों का ज्ञान नहीं है। अभी मान लो मनुष्य सारा दिन चाहे जॉब में है, चाहे वो अपने व्यापार में है, या घरों में माताएं काम काज कर रही हैं, या बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इन सुंदर चीजों के लिए एक 10 मिनट भी तो नहीं मिल रहा है। वो सोचते ही नहीं, बच्चे घर आए तो उन्हें होमवर्क करना है, ट्यूशन में जाना है, माँ बाप घर आए उन्हें अपना घर का काम काज संभालना है, फिर थोड़ी बहुत टेंशन रही, टीवी देख ली, बाजार में चले गए, शॉपिंग कराई, ये वो। अध्यात्म के लिए अगर आधा घंटा भी रोज हर परिवार में मिले तो एक तो ये ज्ञान प्राप्त हो मनुष्य को। ज्ञान की कमी होने से, अब मान लो एक चीज है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, पति पत्नी के बीच में संबंध में कड़वाहट आ गई है, प्रेम खत्म हो गया, घर में खुशी का माहौल नहीं रहा, वो उसको दोष देगा, वो उसको दोष देगा। लेकिन अगर ज्ञान सच्चा मनुष्य के पास हो तो मनुष्य अपने जीवन में परिवर्तन करेगा। वो विचार तो करेगा कि मेरी यहाँ गलती है और मुझे यहाँ अपने जीवन में परिवर्तन करना है। हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यूके में किया था, मैं अपने को कहाँ चेंज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, सब जरा बैठ के सोचेंगे। मुझे इस विचार को चेंज करने की जरूरत है, मुझे अपने इस व्यवहार को चेंज करने की जरूरत है, या मुझे अपने क्रोध को चेंज करने की जरूरत है। सबने बहुत अच्छी गुड फीलिंग की। अब दूसरी बात जो आती है कि चेंज करना तो मनुष्य चाहता है पर वो कर नहीं पाता जी। एक व्यक्ति क्रोध के अधीन है, एक व्यक्ति शराब के अधीन है, एक व्यक्ति में एक छोटा सा संस्कार है कि वो बुरा बोलता है और बोल के पछताता है, माफी मांगता है, यार मेरा ये संस्कार हो गया, मेरी गंदी आदत हो गई, मैं बहुत चाहता हूँ इसको बदलना, सब लोग मुझे बोलते भी हैं तुम में 1000 गुण हैं, अगर ये एक दाग भी तुम मिटा लो तो तुम तो हीरा हो, सोना हो।
बार बार वो करता है, बार बार माफी भी मांगता है,
माफी मांगता है। तो इसका कारण ये है कि मन में शक्तियाँ बहुत कम रह गई हैं। तो मनुष्य चाहते हुए, रियलाइज करते हुए, उसका विवेक होते हुए भी उसको चेंज कर नहीं पाता। इसके लिए ही यहाँ राजयोग सिखाया जाता है कि हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को सर्वशक्तिवान से जोड़ें, उस परम सत्ता से जोड़ें जो हम सबका सुप्रीम फादर है, जो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसे भगवान कहते हैं, उससे जुड़ेंगे, उसकी शक्तियाँ हम में आएंगी, मन की शक्तियाँ बढ़ेंगी, हम इन मनोविकारों को जीतेंगे, ये चेंज करने की जो हमारी इच्छा है उसमें हम सफल होंगे। इसलिए हम देखते हैं, लोग देखते हैं, हमारे आने वाले लोग शराब छोड़ देते हैं, क्रोध छोड़ देते हैं, अशांति करते थे, बुरा बोलते थे, सब बदल जाता है। योग अभ्यास से ये शक्ति मनुष्य में आ जाती है, बस इन दो चीज़ों की ही जरूरत है।
बिल्कुल बिल्कुल, इन पे विशेष करके चलने की खास आवश्यकता है। अब कई बार व्यक्ति ये कहता है बेटा जी कि हम अपनी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा व्यस्त है तो इन बातों पे हमारा वैसा ध्यान नहीं रहता, बाहरी प्रभाव हम पे ज़्यादा हावी हो जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार मुझे कोई बोल रहा है, वो मेरी खुशी को गुम कर रहा है, मेरा अपमान कर देता है, या मुझे मन इच्छित चीज़ें प्राप्त नहीं होती, तो यहाँ मेरी खुशी चली जाती है, बिजी हूँ, इनके लिए उतना वक्त मैं नहीं निकाल पाता, यहाँ क्या कहेंगे?
यहाँ हम लोगों के सामने भी ये सब बातें आती हैं जी, क्योंकि हम लोग भी बहुत बड़े संगठन में रहते हैं। एक व्यक्ति हमसे बुरा बोल रहा है और निश्चित रूप से जो व्यक्ति बुरे वचन सुनेगा उसकी खुशी तो चली जाएगी
जी।
लेकिन हम प्रैक्टिकल में एक अभ्यास करते हैं कि दूसरा व्यक्ति बुरा बोल रहा है, अब हमें पता है इस व्यक्ति की बुरे बोलने की आदत पड़ गई है, तो हम उसको लाइटली लेंगे और हम अपनी खुशी को महत्व देंगे कि जब वो बुरा बोलना नहीं छोड़ता तो हम अपनी खुशी को क्यों छोड़ें, हम खुश रहना क्यों छोड़ें। ये एक विचारधारा है जिससे हम अपनी खुशी को मेंटेन करेंगे। मान लो किसी ने बहुत बुरा बोला, हमें माइंड भी हो गया ये बहुत बुरा बोलता है, हमें फील हुआ, थोड़ी देर के लिए हमारी खुशी चली गई, लेकिन जल्दी हम संभले कि नहीं, हमें तो भगवान ने बहुत खुशी दी है, उससे हमें ये मिला है, अपनी जीवन की सुंदर घटनाओं को याद करें और मुझे तो खुश रहना है, ये बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, तो जल्दी मनुष्य उससे निकल के फिर से प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय ज्ञान का यूज करके हम बहुत जल्दी अपनी खुशी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उस व्यक्ति को भी क्षमा कर सकते हैं, उसके प्रति जो हमारे एटीट्यूड ऐसे हो जाते हैं, ये मेरा शत्रु है, जब तक ये रहेगा मुझे खुश नहीं रहने देगा, ये मरे तो मैं खुश रहूं, तो इससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं, वो भी जिए, हम भी खुशी से जिए, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए और हम भी अपनी खुशी को छोड़े नहीं।
या ये वाली बात जैसे आपने कही भ्राता जी, ये भी एक चीज़ आती है, इससे मैं जब तक बदला ना ले लूँ तब तक मुझे खुशी नहीं मिलेगी, या जब तक इसका ऐसा ना हो जाए तब तक मैं खुश नहीं होगा, ये भी कई लोग मानसिक
बिल्कुल है ही ये। और जब वो उसका बुरा होता देखते हैं
तो खुश होते,
डबल भोजन खाते हैं रात को, बड़े सुख से सोते हैं, वह आज मजा आया जिंदगी में, अब इसे लेसन ठीक मिला, और वो खुश रहता है बहुत, और उसको कोई कष्ट नहीं होता। तो लोग भगवान से भी नाराज होते हैं, पापियों को तुम मदद कर रहे हो, देखा वो सफल भी हो रहा है, वो बहुत खुश रहता है, हम इतने अच्छे काम करते हैं, हम तुम्हारी पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति हमारा पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जो बदले की भावना रहती है सूक्ष्म रूप से भी, ये हमारी खुशी के लिए जैसे घुण है उसको खाती ही रहेगी, और जब जब उस व्यक्ति की याद आएगी, जब जब उसके दर्शन हो जाएंगे कहीं, और अगर सवेरे ही दर्शन हो गए तो सारे दिन के लिए खुशी चली गई, तो कहेंगे आज तो सवेरे इस काले व्यक्ति का चेहरा देख लिया, सब बिगड़ गया हमारा खेल। तो थोड़ा सा अपने विचारों को चेंज यहाँ करें
जी,
हल्का करें अपने को, और जो स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हैं, जो राजयोग का पथ अपनाए हुए हैं, जिन्होंने प्रभु मिलन का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर लिया है, उनको तो ऐसे व्यक्ति पे दया आनी चाहिए। हम महान हैं और वो बहुत छोटा व्यक्ति है, हमारी ओर से उसे गुड फीलिंग जाए, हम उसे बदला लेकर क्या करेंगे, क्योंकि हम यदि उससे बदला लेते हैं तो उसका हाल और बिगड़ेगा, और आज यदि वो 4 लोगों को कष्ट दे रहा है तो कल 40 को देगा। तो हम उसे गुड वाइब्रेशंस दें, दया भाव रखें, मर्सीफुल हो जाएं उसके लिए, और ये गुड वाइब्रेशंस दें कि इसमें चेंज आ जाए, तो हमारी बदले की भावना भी समाप्त हो जाएगी और उस व्यक्ति के व्यवहार में भी चेंज आ जाएगी।
जी जी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भ्राता जी, यदि हर एक ऐसा कर ले तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो सार में भ्राता जी, यदि मैं 3 सूत्र आपसे जानना चाहूँ हमारे सभी दर्शकों के लिए, यदि उन्हें जीवन भर खुश रहना है तो क्या क्या करें?
वो ये अपने को समझा दें कि खुशी मेरा सबसे बड़ा खजाना है। खुशी अगर जीवन में ना हो और बाह्य धन संपदा बहुत हो तो वो धन संपदा मेरे लिए बेकार है। तो मुझे खुशी के खजाने को किसी भी तरह खोना नहीं है। कुछ भी हो जाए, बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, इनको आने दो और जाने दो, क्योंकि हम अंधकार में रह रहे हैं, हम कलयुग के अंत में रह रहे हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, इसलिए मुझे अपनी खुशी को खोना नहीं है। पहली तो ये चीज सबको पक्की कर देनी है। दूसरी चीज, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़ी तो हमारी मनोस्थिति है, बातें छोटी होती हैं, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं, इसलिए जिसको खुश रहना है वो बड़ी बातों को छोटा करते चलें। बातें आई, चलो उनका समाधान भी किया, उन पे विचार भी किया, और जल्दी से उससे मुक्त होकर आगे बढ़ जाएं। नहीं तो होता यह है कि एक बात मनुष्य पे छाई रहती है, लंबे काल तक अपना प्रभाव डालती है, उसकी खुशी को छीन लेती है। और तीसरी चीज, एक्सपेक्टेशंस न रख के, हम दाता हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम बड़े हैं, हम किसी से क्या चाहें, हम सबकी चाहनाओं को पूर्ण करने वाले बने। ये 3 सूत्र यदि अपना लेंगे तो खुशी जीवन में स्थायी रहेगी और एक ऐसा खजाना रहेगा कि चेहरा सदा खुशी से चमकता रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, जैसे आपका चेहरा चमकता रहता है और साथ ही ब्रह्मा कुमारीज में जिनसे भी मिलते हैं उन सबका चेहरा जैसा चमकता रहता है, हमारी कामना रहेगी सारे संसार में हमारे सभी भाई बहनों के चेहरे ऐसे ही खुशी से चमकते रहे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आज की इस चर्चा जो है खुशी पे बहुत सुंदर प्रकाश दे रहे थे भ्राता जी कि कैसे हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, और खुशी से ही हमने शुरुआत की थी। मित्रों, चंद पंक्तियां हमारे पास आई हैं जो खुशी पे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, जो हमारे काम आने वाली हैं। जो भ्राता जी अंतिम बात कह रहे थे उससे रिलेटेड ही है कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है। जो इंसान ये हुनर सीख जाता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। कितनी गहरी बात है ना, भ्राता जी भी कह रहे थे कि हम देते चलें, कोई कामना न रखें, तो सचमुच दूसरों को खुशी देने से भी खुशी प्राप्त होगी और दूसरों की खुशी को देखकर खुश होने से भी हम बहुत खुश रहेंगे, अन्यथा कई बार दूसरों की खुशी को देख के हम दुखी होने लगते हैं। समाधान का लक्ष्य यही मित्रों कि आपका जीवन खुशहाल रहे, आनंदित रहे, यही हमारी शुरू से ही कामना रही है। तो जीवन में जो भी विघ्न हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनके लिए पॉजिटिव रहिएगा और अपने जीवन में खुशहाल रहते हुए अपने आसपास भी खुशहाली का माहौल बनाते रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।